आम लोग दुनिया के पीछे फिरें, वो नफ्स के पीछे फिरें, वो जो उनका दिल चाहे करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन उम्मत मुस्लिमा एक खास उम्मत है। वो आपने एक शेर भी सुना होगा ना कि खास है तरकीब में कौम हाशमी। इस कौम की तो तरकीब, या जिसको आप कहना चाहिए कि इनकी तो रेसिपी ही बड़ी डिफरेंट है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसके लिए मुझे और आपको करना क्या था? वही करना था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में आकर किया। आपने कुरान के जरिए लोगों का तज़किया किया, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, किताब सिखाई, किताब पढ़ी। अरब बद्दू थे, जाहिल थे, लुटेरे थे, डाके जनी थी। इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे कि जैसे आपके खेत की चिड़िया उड़कर दूसरे के खेत में जाके बैठ गई, पौधे पे इस बात पे लड़ते थे। तुम्हारे दरख्त की डालियां मेरे बाग में क्यों आ गई हैं, इस पे लड़ते थे। अब मौलाना हाली की आपने बातें भी सुनी होगी ना, कि कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। बेटियों को जिंदा दफन वो कर देते थे। सूद जो था वो आम था, रिश्वत आम थी, शराब पानी की तरह पी जाती थी। इतने गंदे माहौल में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजा, लेकिन 23 साल के मुख्तसर से अरसे में आपने दुनिया की तकदीर बदल दी। अपने तो अपने हैं, गैर नबी सल्लम के बारे में गवाहियां देते हैं। अभी चंद दिन पहले रमजान में, बल्कि एक दर्स में, मैंने कोटेशंस के साथ पावर पॉइंट से दिखाया कि किस तरह आज नॉन मुस्लिम नबी सल्लम को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आपने माइकल हार्ट का नाम तो सुना ही होगा, दी हंड्रेड्स बुक उसकी है, और दी हंड्रेड्स में उसने 100 शख्सियात रखी हैं, और सबसे ऊपर उसने नंबर 1 पे मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और साथ उसका अपना कोट है कि मुझे पता है कि मेरी इस किताब को पढ़ के क्रिश्चियनिटी की जो वर्ड है उसमें एक तूफान उठ जाएगा। मैं खुद को खुद भी हालांकि क्रिश्चियन कहता हूँ, और लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात पे कोई शर्म नहीं कि मैं मोहम्मद, जो एक मुसलमान लीडर थे, उनको सबसे ऊपर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इट्स रियलिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेहनतें जो आपने की, आज मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो कितने रिसोर्सेज हैं। हम लोग अभी सुबह सैक्रामेंटो से आपके फ्रेस्नो में पहुंचे, 3 घंटे की ड्राइव लगा ले। कितना सफर है किसी को पता है? माइल्स कितने हैं? 175 माइल्स हैं। किलोमीटर्स कितने होंगे? इसी से 200-300 लगा लीजिए। मक्का से मदीना कितना दूर है? मैं आज रास्ते में भी सोच रही थी, और आपका भी एरिया बहुत मुझे बैरन लग रहा था ना, खुश्क सीधा सीधा। मैं सोच रही थी कंफर्टेबल गाड़ियां, एसी लगे हुए, ठंडे पानी की बॉटलें साथ हैं, आप टेलीफोन पे लगा लें, चार्जर साथ हैं, आप जो रास्ते में चाहें आसाइश ले लें, कुर्सी सीधी कर लें, कुर्सी लटा लें, आप आंखें बंद कर लें, आप ब्लाइंड खोल लें, बंद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी आरामदेह गाड़ियां हैं ना। और वहां से हम निकल के इधर आपके पास एक बात सुनाने के लिए आ गए, एक शाम को और सुना देंगे। कई लोग इस चीज को इतना बड़ा एक इनाम समझते हैं, या इसको एक बहुत बड़ी बात समझते हैं कि हाय आप इतनी दूर से आए हमें सुनाने के लिए। मैं आज रास्ते में ये सोच रही थी कि जहाज में भी आते हैं, अब हम जहाजों में सफर करते हैं, इतना फील नहीं होता, लेकिन जब दिन में एक शहर से दूसरे शहर में जाएं, तो मैं रास्ते में ये दुआएं कर रही थी कि अल्लाह, जो ब्रदर गाड़ी चला रहे हैं, जिन सिस्टर ने इसका इहतमाम किया, जो भी इस पूरे ट्रिप का जरिया बने, तो उनको बेहिसाब अजर देना। हम सो जाए बैठ जाए, ड्राइवर साहब तो नहीं सो सकते? कितनी एफर्ट की जा रही सिर्फ इसलिए कि आप सबके साथ कुरान की बात शेयर की जाए। और अल्लाह की कसम, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था यहाँ आने का। आपको अगर मिलना है तो अल्लाह के लिए मिले हैं, आपको देखकर खुशी हो रही है तो अल्लाह के लिए, बाकी सब चीजें बात की हैं, लेकिन सिर्फ एक तड़प कि जो काम अल्लाह ने नबियों से लिया वो आज हमसे ले लें। हम मुसलमानों की जिंदगी का मकसद ही ये था कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ जोड़ते, और ये काम अभी तो हम सिर्फ मुस्लिम्स में कर रहे हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जब हम दर्स देने के लिए निकलेंगे घरों से, हम जब लोगों को तालीम देने निकलेंगे और हमारे मुखातिब नॉन मुस्लिम होंगे। देखिए असल काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ हमारा। बहुत सारे लोग हैं जो दावा दे रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को, लेकिन जब लोग कहते हैं ना, अच्छा किसको पढ़ाते हैं, कितने लोग आते हैं, कहाँ हैं, तो मैं कहती हूँ कौन है? अभी सारे तो मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मुस्लिम हैं। हम सब तो सब इस्लाम को बचपन से जानते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी को नमाज का नहीं पता, रोजे का नहीं पता, हज का नहीं पता, सब कुछ पता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उनसे बाद में जरूर मिलाइएगा, ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है ना। लेकिन असल काम क्या था कि हमने अपने सब मुसलमानों को साथ मिलाकर एक टीम बनानी थी ताकि हम नॉन मुस्लिम्स तक पहुंचे। कभी आपने सोचा कि अल्लाह ताला आपको कैलिफोर्निया क्यों ले आया? जो आपका शहर है वो उसका ले ले, मैं तो गलत ही लूंगी, अभी जबान पे नहीं चढ़ा, क्यों लाया? अल्लाह का मकसद क्या था कि आपके जरिए इस जगह लोगों को आग से बचाया जाता। नबी सल्लम तो मक्का में थे, फिर उधर से हिजरत करके मदीना में आ गए, अल्लाह ताला ने 10 साल के बाद आपको अपने पास बुला लिया। उसके बाद आपने सोचा कि इस वक्त 100+ जो मुस्लिम मुल्क हैं ये कहाँ से आए? ये सहाबा की कोशिशों से हुए। जो सहाबी जिस तरफ गए वहाँ इस्लाम फैल गया। मैं सोचती हूँ कि अगर हजरत उमर जैसा ईमान रखने वाले लोग आज पूरी दुनिया में फिर रहे होते तो जहाँ से वो गुजरते वहाँ इस्लाम का झंडा लग चुका होता। लेकिन शायद आज इतना लिबरल वक्त आ गया कि अब इससे भी खौफजदा हैं, हम क्यों किसी को डिस्टर्ब करें। मेरे से एक माँ ने पूछा, मम्मी मैं अपने दोस्त को क्यों इस्लाम की बात बताऊं, वो मुझे क्रिश्चियनिटी की क्यों ना बता दें। यानी आज वक्त के साथ साथ जहनों में इतनी धुन छा गई कि हमें इसका भी यकीन नहीं रहा कि ठीक है बाकी लोगों को इस्लाम की दावत देनी भी चाहिए कि नहीं। तुम अपने हाल में खुश, हम अपने हाल में खुश। कहते रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, बिग क्रॉस लगा दीजिए, रिलीजन इज नॉट अ पर्सनल मैटर, ये तो एक सोशल मैटर है। आप देखिए कि मैं और आप, इस आप अगर इस घर में 10 साल से रहते हैं, आपके इधर भी नेबर हैं उधर भी हैं, आप भी, हम सब अपने घरों का सोचें, क्या हम अपने नॉन मुस्लिम नेबर्स के साथ राह और रस्म बढ़ा चुके? जब खाना पकता है तो उसमें 2-3 प्लेट्स निकलती हैं बिरयानी की, ये शम्मा को दे दो, या आयशा को भेज दो, ये फखालदा को भेज दो, जो भी आपकी दोस्त हैं, क्या हम अपने मज़े मज़े के पके हुए खानों को अपने नेबर्स के साथ शेयर करते हैं जो नॉन मुस्लिम है? क्या कभी हमने अपने घर के पत्ते उठाते उठाते जरा अपने नेबर्स के पत्ते भी उठाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। आप देखिए कि अपना घास काटते हैं ना तो आप जरा नेबर्स का भी काटते हैं, क्यों? इस्लाम लोगों को आपस में एक दूसरे के करीब करता है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे हमसायों के हकूक बताए, फिर इतने बताए कि मुझे शक हुआ कि अब इसके बाद जिब्राइल कहेंगे कि हमसायों को अल्लाह ताला ने विरासत में भी हिस्सा दे दिया। कैसे मैं और आप अपने नेबर से अलग अलग रह सकते हैं? अल्लाह ने ये लोग हमारे लिए तोहफे के तौर पर रखे हैं। हम खुशकिस्मत हैं, लोग कहते हैं मक्का में रहना खुशकिस्मती है, वो है खुशकिस्मती, इसमें कोई शक नहीं। आपकी एक एक नमाज, एक एक लाख नमाज हो जाएगी अगर आप खाना काबा में जाके पढ़ेंगे, आप सिक्योर हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं सोसाइटी का। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं अपने आप को सबसे पहले इसमें लेके चलूंगी कि हम वेस्ट में रहने वाले खुशकिस्मत हैं। किस रंग में कि हमारे पास कितनी दावा अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारा कितना इंट्रैक्शन है, सुबह से लेकर अब तक कितने नॉन मुस्लिम मिले होंगे। आपके घर में मेल मैन आया हो सकता है, मेड्स आपके पास आ सकती हैं, आपका ग्रास कटर आ सकता है, आप शॉपिंग करने जाते हैं, क्या हम ये दर्द लेकर जाते हैं कि हमने उनको भी दीन की दावत देनी है? क्या हमारे पॉकेट्स में कोई खूबसूरत से गिफ्ट, कोई कार्ड, कोई छोटी सी बात के जो उनके दिल की खिड़की खोल दे कि जिससे उनको अल्लाह से प्यार हो जाए? नबी सल्लम की तो पूरी जिंदगी जद्दोजहद की जिंदगी थी। अगर आप भी सिर्फ अपने तक रहते तो आप देखिए जब गारे हिरा में वही उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उठिए पढ़िए अल्लाह के नाम पर जिसने तो आपको पैदा किया, आप और नमाजें शुरू कर देते और रोज़े शुरू कर देते। अमूमन हमारे जहन में क्या आता है, फलाम बड़ा इबादत गुजार है, मतलब यह कि बड़ी लंबी नमाजें पढ़ता है, रोज़े रखता है, तहज्जुद पढ़ता है। क्यों पढ़ते हैं हम और आप नमाज? चलिए इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। आप सब माशाल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ के बैठे होंगे, मुझे नहीं पता जोहर की आपके पास टाइम हुआ है, आपने पढ़ ली है कि नहीं, लेकिन चले अभी जोहर पढ़ेंगे, ठीक है? फजर पढ़ी आपने, क्यों पढ़ी? सिंपल सी बात, अल्लाह का हुक्म था। दूसरा जवाब कुछ लोगों का हो सकता है, सवाब के लिए पढ़ी। तीसरा आप भी दे दीजिए कोई, आप बताइए क्यों पढ़ी फजर आपने? जी आपने लिए पढ़ी, फर्ज है जी। और बताइए, जन्नत में जाने के लिए जी। आप बताइए आपने फजर क्यों पढ़ी? आप जी आप बताइए, अल्लाह के खौफ से पढ़ी, मोहब्बत से पढ़ी। मैं उनको भी तो जवाब देने देना, आपने क्यों पढ़ी बेटा फजर? हाँ अल्लाह के लिए पढ़ी, अल्लाह को क्या मिला आपकी फजर से? ऐसी हम बातें कर रहे हैं, डोंट वरी, ये कोई दर्स नहीं है। आप बताइए बेटा, आपने फजर पढ़ी थी? हाँ? नहीं पढ़ी थी? हाँ? क्यों पढ़ते हैं? देखिए मैं आपको इसकी मिसाल दे देती हूँ, आप सबने जो भी बात की बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह के लिए खौफ में मोहब्बत में, वो अलामा इकबाल भी कहते हैं कि किस कदर मुश्किल तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कहाँ प्यार, नींद तुम्हें प्यारी है। मेरे लिए सबसे मुश्किल टेस्ट अल्लाह की मोहब्बत का जो बंदा देता है वो फजर की नमाज की सूरत में देता है। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत स्लाइड भेजी कि कितनी अजीब बात है, हम फजर के लिए तो नहीं जाग सकते लेकिन फजर तक जाग सकते हैं। और बहुत सारों को ये जुमला समझ आ गया होगा कि वीकेंड नाइट्स क्या होती हैं और जब शादियों पे सब जमा होते हैं, कहते हैं फजर तक जागेंगे और फजर फिर दो फर्ज पढ़ के सो जाएंगे, लेकिन फजर के लिए नहीं जागते। तो आइए मैं थोड़ा सा आपकी मदद करना चाहूंगी कि जो हम नमाजें पढ़ते हैं असल में ये नमाजें हमें क्या देती हैं। आप देखिए कि हमारी गाड़ियों को चलने के लिए गैस चाहिए होती है ना, कुछ मुल्कों में उसको पेट्रोल कहते हैं, यहाँ गैस कहते हैं, ऐसे ही है ना। जब आप गाड़ी में गैस डालते हैं तो उसके बाद फिर क्या मतलब उससे क्या करना होता है कि आप उस गाड़ी में बैठें और कहीं जाके सफ़र करें, आप ग्रोसरी ले लें, आप अपने बच्चों को स्कूल ले आएं, छोड़ दें, आपके हस्बैंड जॉब पे चले जाएं, 5 वक्त मस्जिद में चले जाएं। जितनी गाड़ी चलती जाएगी उतनी गैस कम होती जाएगी ना। जब गैस कम होती है तो फिर आप क्या करते हैं, दोबारा फिर उसको गैस स्टेशन पर ले जाते हैं। ये सिंपल सी बात है। नमाज और दूसरी नेकियां भी हमारी जिंदगी में बिल्कुल गैस की हैसियत रखती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, आप इमेजिन कीजिए, अल्लाहु अकबर, आपने पहले वजू किया, तैयारी की, गोया कैसे जैसे आप कहीं जाते हैं तो आने से पहले तैयारी करते हैं ना, या हम अगले को इज्जत दे रहे होते हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई आपके घर आने की, हम ऐसे सार उठाकर नहीं आ गए, मुंह धो के आए हैं, हम कंघी करके आए हैं, हम रिस्पेक्टफुल बन के आपके पास आए हैं बिकॉज वी लव टू कम हियर। ठीक है, जब हम किसी को मिलने जाते हैं तो तैयारी करते हैं ना, इसी तैयारी को जब आप अल्लाह ताला से मुलाकात के नाम पे कहते हैं ना, तो ये वुजू है। कल से या आज से अगली नमाज का जब वुजू करेंगे ना, तो इमेजिन कीजिएगा, अल्लाह ताला मैं आपके लिए हाथ धो रही हूँ, अल्लाह ताला कुल्ली भी कर रही हूँ, पता नहीं मुंह में से बास ना आ रही हो, अल्लाह ताला नाक के अंदर भी पानी डाल रही हूँ, अपने चेहरे के ऊपर भी पानी डाल रही हूँ। आप इमेजिन करेंगे कि आपके गुनाह झड़ते हुए दिखेंगे। और हदीस में आता है कि जब एक इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है, वजू शुरू करता है, तो जिस जिस जिस्म के हिस्से से वजू का पानी गिरता है ना, उसके गुना झड़ जाते हैं, कुल्ली के, नाक के, मुंह के, हाथों के, और इंसान बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो जाता है। अब आपने तैयारी की अल्लाह ताला से मुलाकात की, आपको उसी से फीलिंग आने लगी कि मैं किसी को मिलने जा रही हूँ, बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने कहीं जाना होता है ना, तो हम उससे पहले इमेजिनेशन में सोच रहे होते हैं। मैं भी सोच रही थी आज, पता नहीं ये शहर कैसा है, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। हम रास्ते में थे तो उस्मान ने ये तस्वीरें शेयर कर दी उस रूम में, तो मैं इनको दिखा रही थी, मैंने कहा देखें जहाँ जा रहे हैं तो रूम की पिक्चर पहले से देख ली। कितने आसान है, कई लोग अब हमसे पूछेंगे आप कहाँ गए थे, हमें तस्वीरें भेजें, फिर हम उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ भेज देंगे कि अच्छा अभी हम यहाँ गए थे। खुशी होती है ना, नमाज से पहले ही खुशी शुरू हो जाए। अगर मुझे और आपको नमाज के वक्त का इंतजार नहीं है और उसकी तैयारी का शौक नहीं है, तो मान लीजिए कि अल्लाह से मोहब्बत में कमी है। जिस जगह दिल की खुशी से जाते हैं वो भी हमें पता है, और जिस जगह हम किसी के मजबूर करने पे जाते हैं वो भी हमें पता है।